पृष्ठ संख्या 133, अध्याय 10, भारतीय इतिहास लेखन का एक सर्वेक्षण क वैदिक परंपरा। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्य हमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, इनके अंतर्गत वेदांग जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष नामक 6 भागों में बटे हुए हैं, साहित्य में मिलती हैं। निश्चित रूप से यह तिथि फरक नहीं है, परंतु इनकी सर्वांगता यह प्रमाणित करती है कि इनका विषय भारत की प्राचीन संस्कृति का यह वह विस्तृत क्षेत्र है जिसे आधुनिक विज्ञान ने इतिहास के मूल वृक्ष की शाखाओं के रूप में वर्तमान में विकसित किया है। यह साहित्य भारत की वैदिक सभ्यता की देन है जो ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व भी विद्यमान थी। इतिहासकार यह मानते हैं, यद्यपि इतिहास की यथार्थ विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता, कि ईसा से 610 वर्ष पूर्व बौद्ध जैन धर्म का उदय, ब्राह्मण धर्म, आधुनिक इतिहासकारों ने वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म का नाम दे रखा है, जो स्वयं में एक गलत धारणा है के विरोध में हुआ था। इतिहासकारों की यह मान्यता सत्य है या नहीं, इसका विश्लेषण करने का यहाँ कोई विचार नहीं है, लेकिन इस स्थल पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि निस्संदेह उक्त भारतीय वैदिक साहित्य बौद्ध धर्म के उदय काल से बहुत पहले से विद्यमान रहा होगा, जिसके अनुसार प्राचीन जीवनचर्या चल रही होगी। ऐसी स्थिति में यह मान लेना कि भारत के पौराणिक साहित्य को इतिहास नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनके पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, गलत होगा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पाकालीन सभ्यता यह प्रमाणित करती है कि भारत में 35,000 वर्ष ईस्वी पूर्व एक समुन्नत सभ्यता विद्यमान थी। पौराणिक साहित्य में तिथिक्रम का उल्लेख न होने के कारण भी इतिहास की संज्ञा से विभूषित न करना भी उचित प्रतीत नहीं होता। भारत के दासता के कारण एक लंबी अवधि तक विदेशी विद्वानों एवं कतिपय स्वदेशी विद्वानों की यह धारणा रही कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था। लोयस डिकिंसन ने लिखा है कि हिंदू इतिहासकार नहीं हुए हैं। उसका विरोध डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे ने किया है, साथ ही साथ समर्थन भी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री द्वारा किया गया है। इस मत पर यूं तो डॉक्टर चौबे भी लोयस डिकिंसन तथा उसके मत समर्थक पाश्चात्य इतिहासकारों के मत को अमान्य करते हैं, परंतु वह जिस प्रकार पृष्ठ संख्या 132 इन शब्दों में यह अमान्यता प्रकट करते हैं, वह अधिक तर्कसंगत न होने के कारण ग्राह्य नहीं हुई है। वह कहते हैं कि प्राचीन काल से वर्तमान तक भारतीयों में इतिहास की एक अवधारणा रही है, जिसके अनुसार प्रकृति से प्रभावित हुए तथा दुखों से विकसित लोगों के लिए 4 आश्रम और पुरुषार्थ के 4 साधन नियत किए गए थे, ताकि वे जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। इस तरह भारतीय इतिहास का स्वरूप व्यक्तिवादी है। शतपथ ब्राह्मण के अंग्रेजी अनुवादक इंग्लैंड देशीय जूलियस एगलिंग इतिहास का अर्थ लेजेंडस ट्रेडिशनल मिथ करते हैं। विंटर निट्स भी इस प्रकार का अर्थ देते हैं, ही हैज आख्यांस एंड पुरानास He has Akhyanas and Puranas, narratives, myths and legends, and Indians has no history but episodes. A.A. MacDonald का कथन है कि history is the one weak spot in Indian literature. It is in fact non-existent. इस प्रकार Fleet, Elphinstone, Professor Cowell, B.A. Smith तथा Max Muller आदि ने यह वक्तव्य दिया कि भारतीय इतिहास शास्त्र से अपरिचित रहे। कुछ भारतीय विद्वानों ने भी इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्राचीन भारतीयों ने इतिहास की ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु भारतीय इतिहास शास्त्र की अपनी विशिष्ट परंपरा, विधा, शैली एवं स्वरूप रही, जिसे आधुनिक अवधारणा में देखने का प्रयास किया गया और एक पक्षीय घोषणा की गई कि भारतीय इतिहास शास्त्र से अपरिचित रहे। इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख वैदिक वाङ्मय में हुआ है, जो स्वतः प्रमाणित करता है कि इसकी एक परंपरा थी। भारतीय इतिहास शास्त्र की परंपरा का उद्घाटन डॉ. गोविंद चंद्र पांडे, डॉ. विश्वंभर शरण पाठक, डॉक्टर घोषाक, डॉक्टर यस पी सेन, ए के नीलकंठ शास्त्री, एन ए एस रमन्ना, ए के वार्डर, आर सी मजूमदार तथा गांगुली आदि विद्वानों ने अपनी कृतियों के माध्यम से किया है और यह पूर्णतः प्रमाणित है कि भारतीय इतिहास शास्त्र हिस्टोरियोग्राफी की विधा से परिचित थे, जिसका संक्षिप्त सर्वेक्षण अनुलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत है। वैदिक इतिहास लेखन ऐतिहासिकता। वेद न केवल भारतीय समाज द्वारा समादृत है, बल्कि विश्व के महान विद्वानों ने भी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा है तथा उनकी महत्ता को स्वीकारा है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषेय है, वे सदियों पूर्व से मानव जीवन के कल्याण, पृष्ठ संख्या 133, के साधन बनकर उन्हें अनुप्राणित करते आए हैं। इसमें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, सदाचार, संस्कृति, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन से संबंधित सभी विषय उपलब्ध हैं। अतः विद्वानों ने इसे विश्वकोश के रूप में मान्य किया है। वेदों के अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त की परंपरा रही। वैदिक कालीन समाज की परिस्थितियों की व्याख्या में कतिपय विद्वानों का मत है कि वेदों में इतिहास नहीं है, परंतु ऋषियों के कर्तृवाद से ऋषे मंत्रम कृताम स्तोमई कारु रहमस्मि कर्तस्तोमानाभ निरुक्त 6-5 ऋषिभ्यो मंत्रम कृतभ्यो मंत्र पतिभ्य ऐतरेय आरण्यक आदि प्रयोगों से ऋषियों से कर्तृवाद की एक दीर्घ परंपरा का ऐतिह्य ज्ञापक प्रमाण है। वैदिक अर्थों को ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत करने वाले का निरुक्त में कहीं इत्याख्यानम तथा कहीं इत्यतिहासिका कहा गया है। निरुक्तकार ने स्वयं ही लिखा है, तत्को वित्र मेघ इति नैरुक्ता त्वास्त्रोसुर इत्यतिहासिका निरुक्त 2/16। अर्थात वृत्त कौन है? मेघ है, ऐसा निरुक्तों का सिद्धांत है। त्वास्त्र असुर है, ऐसा ऐतिहासिकों का मंतव्य है। इसी प्रकार माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ता पितरः इत्याख्यानम् साध्या देवाः साधना देवाः द्युस्थानो देवगण इति नैरुक्ताः पूर्व देव युगमित्याख्यानम् इस प्रकार यम च यमी चेत्यतिहासिकः निरुक्त इति आदि उल्लेखों से यह प्रमाणित है कि निरुक्त युग में इतिहासकारों का एक वर्ग था जो वेदों के इतिहास शास्त्र से परिचित था। इस कई स्थलों पर निरुक्तकार ने मात्र तत्रेतिहास माचक्षते इत्याख्यानम का उल्लेख कर इतिहास पक्ष को ही प्रस्तुत किया है, क्योंकि इतिहास और आख्यान शब्द वेदों में उल्लिखित हैं। भाष्यकार दुर्गाचार्य ने भी आख्यान से इतिहास का ही अर्थ लिया है। इतिवृत्त परकृत्यम अर्थवेद रूपेण यह कश्चित आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिको अर्थ आख्येते दृष्टियुदितार्थाव भाषणार्थ स इतिहास उच्यते दुर्गाचार्य निरुक्त। दुर्गाचार्य ने आख्यान तथा इतिहास दोनों शब्दों को पर्यायी स्वीकारा है। स्कंद स्वामी ने भी आख्यान तथा इतिहास दोनों शब्दों को पर्यायी स्वीकारा है। स्कंद स्वामी ने भी आख्यान को इतिहास का पर्यायी माना है। निरुक्त के निर्वचन से यह ज्ञात होता है कि यास्क युग में ऐतिहासिकों की परंपरा रही, जिनका स्पष्ट अभिमत था कि वेदों में ऐतिहासिक अभिप्राय विद्यमान है, जिनके कथन लेखन की परंपरा प्रचलित थी। यास्क के अनुसार ऋग्वेद में ही त्रिवेद के अंतर्गत इतिहास मिश्र मंत्र उपलब्ध है। त्रितम कुपे वहित मेतत सुक्तम प्रतिबभौ तत्र ब्रह्मेतिहास मिश्रमिंग मिश्रम गाथा मिश्रम भवति। यास्क ने अपनी निरुक्त में ऋचाओं के विशदीकरण के लिए वैदिक कथाओं को पृष्ठ संख्या 134 इतिहासम माचक्षते कहकर उद्धृत किया है। निरुक्त में वेदार्थ व्याख्या के अवसर पर उद्धृत अनेक विभिन्न संप्रदायों में ऐतिहासिकों का भी एक पृथक स्वतंत्र संप्रदाय था, जिसका स्पष्ट परिचय इति ऐतिहासिका के इस निर्देश से प्राप्त है। इस ऐतिहासिक संप्रदाय के मंतव्यानुसार अनेक मंत्रों की व्याख्या यास्क ने स्थान स्थान पर की है। वैदिक साहित्य में इतिहास पुराण का जो उल्लेख प्राप्त होता है वह पुराण में पुराण से भिन्न स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए विभिन्न अनुवांशक रूपों में प्रारंभिक अवस्था में है, यथा देवापी और शांतनु की कथा को यास्क ने इतिहास कहा है। तत्रे इतिहासम माचक्षते देवा पिश्चर अस्तिशरेण सन तुनश्च कौरव्यो भ्रातरौ वी वस्तु निरुक्त तथा विश्वामित्र को सुदास पैजवन के पुरोहित होने की घटना को भी इतिहास कहा है। तत्रे इतिहास माचक्षते विश्वामित्र ऋषि सुदासः पैसवनस्य पुरोहितो बभूवः निरुक्त। इससे यह प्रकट होता है कि वैदिक काल में इतिहास के अनेक अनुवांगिक उपकरण मौखिक परंपरा में विद्यमान थे, जिनका विकास कालांतर में इतिहास गुण परंपरा के अंतर्गत हुआ। अतः वैदिक इतिहास शास्त्र हिस्टोरियोग्राफी का संक्षिप्त सर्वेक्षण अनुवर्ती पंक्तियों में धातव्य है। इतिहास परक सूक्तियां। डॉक्टर विश्वंभर शरण पाठक का कथन है कि भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्य के रूप में कतिपय बिखरे हुए वैदिक मंत्र हैं जो तत्कालीन राजाओं के सैनिक अभियानों की प्रशंसा में लिखे गए। राजानह न प्रसास्तिभिः सोमासह गोमिः अजते यज्ञः न सप्तधात्रिभिः। इस प्रकार की प्रशंसात्मक रचनाओं के रूप राजाओं में अधिक प्रचलित थे। ऋग्वेद के सूक्तों में कतिपय मंत्र ऐसे हैं जिन्हें दान स्तुति कहा गया है। इन दान स्तुतियों में ऋग्वैदिक कालीन राजाओं के प्रशस्त दान की स्तुति की गई है। कात्यायन के त्रयक सर्वानुक्रमणी में केवल दो सूक्तों में दान स्तुतियों का उल्लेख किया गया है, परंतु आधुनिक शोध की दृष्टि में 68 सूक्तों में दान स्तुतियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 3:21-29 को देवता सर्वानुक्रमणी में पाकस्थामा कौरायण की दान स्तुति कहा गया है। कौरायण पद का अर्थ यद्यपि यास्क ने कृतयान किया है जिसका अर्थ शत्रुओं के प्रति अभियान या चढ़ाई करने वाला व्यक्त किया है, परंतु यह अर्थ भी किसी राजा के सैनिक अभियान की ऐतिहासिकता की ओर संकेत करता है। इस दान स्तुति में शत्रु के ऊपर आक्रमण करने वाले कौरायण तथा महान बलशाली किसी नृपति भोज का संकेत है। इस दान स्तुति से ऐतिहासिक साहित्य के एक विशिष्ट रूप के रचना का ज्ञान होता है। इसी प्रकार अभ्यावर्ती चायमान की दान स्तुति ऋग्वेद मंडल 6:27 सूक्त 8 मंत्र। सार्वणी की दान स्तुति ऋग्वेद 10 मंडल 62 सूक्त 8-11 मंत्र। प्रकण्व की दान स्तुति ऋग्वेद 8 मंडल 55-56 सूक्त। अन्य दान स्तुतियां प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य के रूप में रचित थी। पृष्ठ संख्या 135 वंश मंडल। ऋग्वेद के मंडलों के ऐतिहासिक अनुशीलन से यह तथ्य ज्ञात होता है कि इसके प्रत्येक मंडल का संबंध किसी विशिष्ट ऋषि या उसके वंशजों के साथ निश्चय रूप से उपलब्ध होता है। वंश विशेष के संबंध के कारण इन मंडलों को पाश्चात्य विद्वानों ने अंग्रेजी में फैमिली बुक वंश मंडल कहा है। प्रथम मंडल में ऋषि शतर्चिनः सौरिचा वाले कहे जाते हैं। द्वितीय के ऋषि हैं वृषमत, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठ के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व तथा अंगिरा वंश के नवम के पौमान एवं दशम के महा तथा शूद्रक हैं। वंश मंडल के आधार पर ऋषि वंश के ऐतिहासिक वंश परंपरा का अभिज्ञान होता है। गाथा। वैदिक इतिहास शास्त्र के निर्माण में गाथा परंपरा का विशेष योगदान है। ऋग्वेद में गाथ, गाथा, गाथानी, गाथिन, ऋजुगाथ आदि अनेक रूपों में उल्लिखित है। अवेस्ता में भी गाथा शब्द उल्लिखित है। गाथा अवेस्ता का प्राचीनतम अंश है, जिसके भीतर पारसी धर्म के सुधारक तथा प्रतिष्ठापक महात्मा जरथुष्ट का मानवीय तथा ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। पंडित भगवत दत्त ने श्लोक गाथा और यज्ञ गाथा को एक ही स्वीकारा है। ऐतिरेय ब्राह्मण जिसे श्लोक कहता है शतपथ उसे गाथा कहता है। जैमिनीय ब्राह्मण जिसे श्लोक कहता है ऐतिरेय उसे यज्ञ गाथा कहता है। अधिकांश यज्ञ गाथाएं शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री रखती हैं। ऋग्वेद में गाथा के विशेषण में पुराणी शब्द का प्रयोग पुराणी गाथा के इतिहास पुराण की प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री की ओर संकेत करता है। पुराणी गाथा यह भी संकेत करता है कि ऋग्वेद के युग में कुछ गाथाएं ऐसी विद्यमान थी जिनका उदय लोक जीवन में किसी प्राचीन काल में हुआ था। डॉक्टर विश्वंभर शरण पाठक ने गाथा और नारांशसी को एक ऐतिहासिक प्रकृति का साहित्य स्वीकारा है। ऋग्वेद संहिता के कुछ भागों में आर्यों द्वारा भरत आगमन का संकेत मिलता है। इनमें इंद्र गाथाओं का विशेष महत्व है। अन्य मानवीय जननायकों से संबद्ध गाथाएं भी हैं, जिनका विभिन्न अनुष्ठानात्मक अवसरों पर संगायन किया जाता है था। इंद्र से संबद्ध गाथाएं महाकाव्य शैली में हैं और यह स्पष्ट है कि अत्यंत प्राचीन काल से राजनीतिक घटनाओं से संबद्ध मौलिक परंपराओं का एक विशाल संग्रह विद्यमान था। डॉक्टर पाठक ने इन गाथाओं को ऐतिहासिक लेखन का प्रकार स्वीकारा है। ऋग्वेद संहिता के कुछ भागों में आर्यों द्वारा भारत आगमन का संकेत मिलता है। इनमें इंद्र गाथाओं का विशेष महत्व है। अन्य मानवीय जननायकों से संबद्ध गाथाएं भी हैं, जिनका विभिन्न अनुष्ठानात्मक अवसरों पर संगायन किया जाता था। इंद्र से संबद्ध गाथाएं महाकाव्य शैली में हैं और यह स्पष्ट है कि अत्यंत प्राचीन काल से राजनीतिक घटनाओं से संबद्ध मौलिक परंपराओं का एक विशाल संग्रह विद्यमान था। डॉक्टर पाठक ने इन गाथाओं को ऐतिहासिक लेखन का प्रकार स्वीकारा है। ऋग्वेद में गाथा नारांशसी तथा रैम्बी के साथ गाथा को वर्गीकृत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों प्राचीन लोक जीवन में प्रचलित ऐतिहासिक रूप में पृष्ठ संख्या 136 तीन परंपराएं थी, क्योंकि इनका उल्लेख कालांतर के तैत्तरीय संहिता, काठक संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितिकीय ब्राह्मण तथा गोपक ब्राह्मण में इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद के गाथा तथा इसी सूक्त का नारांशसी तथा रैबी बतलाया गया है। अथर्ववेद सबृहति दस मनुष्य चलत तभीतिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नारांशसी चानुव्यचलत इतिहासश्च स वै पुराणस्य च गाथानां च नारांशसीनां च प्रियंगाय भवित य एवं वेद। अर्थात व्रात्यस्तोम के प्रसंग में इतिहास पुराण गाथा तथा नारांशसी भी उसके पीछे पीछे चली। जो व्यक्ति इसे जानता है वह इतिहास का, पुराण का, गाथाओं का तथा नारांशसियों का प्रियधाम होता है। यहाँ गाथा इतिहास के साहित्य रूप के समान इंगित है। डॉक्टर पाठक ने इन्हें पृथक भूत ऐतिहासिक बिखरे हुए साहित्य के रूप में स्वीकारा है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय इसे वैदिक कालीन लौकिक धारा का ऐतिहासिक अंग स्वीकारते हैं, जिसमें लोक में प्रख्याति प्राप्त महनीय व्यक्तियों का तथा लोक प्रसिद्ध वृत्त का वर्णन करना ही अभिष्ट प्रतीत होता है। ऐतरेय ब्राह्मण की दृष्टि में विविध मंत्रों के विविध प्रकार में गाथा मानव से संबंध रखती है। इस तथ्य की पुष्टि सुनः शेप आख्यान के लिए प्रयुक्त सतगाथम शब्द से पर्याप्त रूपेण होती हैं, जिसकी कथा ऋग्वेद आदि से अनेक सूक्तों में दी गई है। इसलिए ऐत्रेय ब्राह्मण की दृष्टि में गाथा शब्द मनुष्य तथा मनुष्योचित विषयों के द्योतक रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐत्रेय आरण्यक गाथा को ऋक यजु साम के तुलना में उन्हें अवैदिक कहा है, अर्थात यह लोक परंपरा की थी। शतपथ ब्राह्मण में इतिहास पुराण गाथा का उल्लेख यह संकेत करता है कि गाथा ग्रंथ विद्यमान थे। जो गाथाएं ब्राह्मण ग्रंथों में उद्धृत हैं, उसके अंत में सर्वत्र इति पद का प्रयोग यह बताता है कि ये गाथाएं यथा तथ्य रूप से उद्धृत होती रही हैं। महाभारत और पुराण आदि में भी इन्हीं गाथा ग्रंथों से उद्धृत की गई हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के ऐंत्र महाभिषेक के प्रसंग में अभिषिक्त किए जाने वाले प्रसिद्ध राजाओं की स्तुति में अनेक प्राचीन गाथाएं उद्धृत हैं, जो पुराणों के तत्प्रसंग में भी उपलब्ध होती हैं। पिछले काल में गाथा तथा नारासंशी ऋचाएं प्रायः समानार्थक थी, परंतु दोनों में पार्थक्य है। गाथा के अंतर्गत नारासंशय का अंतर्भाव निहित है। इनमें से अनेक गाथाएं पुराणों के राजवर्णन में, विशेषतः श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में उसी रूप में उद्धृत है। पृष्ठ संख्या 137। जैन तथा बौद्ध धर्म में भी महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेशों का निष्कर्ष उपस्थित करने वाले पद्य गाथा नाम से विख्यात हैं। जैन गाथाएं अर्ध मागधी में तथा बौद्ध गाथाएं पाली भाषा में हैं। जातकों की कथा का सार प्रस्तुत करने वाली गाथाएं प्रायः प्रत्येक जातक के अंत में उपलब्ध होती हैं। थेर गाथा में थेरों तथा थेरियों की अनुभूतियों का संकलन किया गया है। प्राकृत भाषा का हाल द्वारा संकलित गाथा सप्तशती में गाथाओं का संग्रह किया गया है। इसी गाथा परंपरा में पार्षिकों की गाथा भी ऋग्वैदिक गाथा परंपरा की समकालिकता से संबद्ध मानी गई है। प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य के रूप में गाथा संबद्ध एक दीर्घकालीन परंपरा को प्रकट करता है। विंटर निर्ज महोदय ने भी ऐत्रेय ब्राह्मण में उद्धृत गाथाओं को भाषा तथा छंद की दृष्टि से रामायण तथा महाभारत की शैली के समीप माना है। We find in the Aitreya Brahman in Akhyan in which the gathas are verses scattered among the prose approach the epics in a language as well as in matter. वेदकालीन विविध धारा। वैदिक युग में विचारों की दो धाराएं स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं। एक वेद धारा जो धार्मिक तथा यज्ञों से संबंधित है, दूसरी इतिहास पुराण की धारा जो लोकवेद का अनुशीलन तथा समीक्षण कर विपुल ऐतिहासिक विवरण देती है, जिसे यास्क ने ऐतिहासिक कहा है। गाथा और नारासंशय सामान्यतया इतिहास और पुराण के साथ वर्गीकृत है। इतिहास पुराण की धारा वेदानुसारिता का अनुगमन अत्यल्प करती है। गाथा साहित्य की धारा लोक जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त और प्रचलित परंपरा के रूप में मान्य थी, जो मानवीय क्रियाकलापों और राजपुरुषों के उपलब्धियों से संबद्ध है। वे अपने ऐतिहासिक प्रकृति से वैदिक साहित्य में सुरक्षित रहे, जिसका निर्वाह सातवाहन नरेश हाल के गाथा सप्तशती तक होता रहा। डॉक्टर पाठक का कथन है कि गाथा और नारासंशय की ऐतिहासिक रचना का स्वरूप ऋग्वैदिक काल में मौखिक परंपरा में विद्यमान था और यह प्रारंभ में ऐतिहासिक परंपरा से पृथक नहीं हो पाया। इन दोनों ऐतिहासिक स्वरूपों का विकास वशिष्ठ तथा भृगवांगिरस द्वारा किया गया। गोल्डनर इन्हें ऋग्वेद कालीन राजकीय वातावरण में विकसित मानता है, जो धर्म निरपेक्ष साहित्य के अंश में विद्यमान थे। डॉक्टर पाठक ने उत्तर वैदिक काल में विद्यमान इतिहास की मौखिक परंपरा को 5 रूपों में विभाजित किया है, जिसमें गाथा, नारासंशय, आख्यान, इतिहास और पुराण है। इनमें पूर्व वैदिक काल में गाथा और नारासंशय के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। मूलतः गाथा पृष्ठ संख्या 138 एक गीत के अर्थ में प्रचलित थे, परंतु शनही शनही यह एक साप्ताहिक रचना के वर्ग में विकसित हुआ। नाराशंसी और गाथा उन गीतों के समूह में के समूह थे जो प्राचीन राजाओं और ऋषियों के विरोचित कार्यों के कृतियों के लिए गाए जाते थे। गाथा ऋग्वेद के बाद के स्तरों में उल्लिखित हैं, जो विशेषता कण्व ऋषि से संबद्ध है, जो भृगवांगिरस समूह के ऋषि थे। कण्व द्वारा ही गाथाओं की रचना की गई, ऐसा विवरण प्राप्त है। ऋग्वेद के 8वें मंडल दूसरे सूक्त 38वें मंत्र और प्रथम मंडल 43वें सूक्त 4थे मंत्र में डॉक्टर पाठक का कथन है कि विश्वामित्र को गाथिन कहा गया है, जो संभवतः गाथा साहित्य के प्रकार से संबद्ध थे। ऋग्वेद में उल्लिखित गाथा और रैमिस को डॉक्टर पाठक ने रचना का एक प्रकार माना है। जैसा कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है, गाथा का संबद्ध इतिहास पुराण से रहा है, इसलिए प्राचीन वैदिक गाथा साहित्य को कालांतर में इतिहास में समायोजित कर लिया गया और वैदिक कालीन गाथाओं को इतिहास पुराण की परंपरा में विश्वसनीय ऐतिहासिक रचना के रूप में स्वीकार किया गया। नाराशंसी, नाराशंसी की ऐतिहासिक परंपरा। वैदिक ऐतिहासिक साहित्य के बिखरे हुए अंशों के रूप में नाराशंसी को प्राचीन भारतीय इतिहास शास्त्र का आनुषांगिक अंग इतिहासकारों ने स्वीकारा है। वैदिक वाङ्मय में गाथा एवं नाराशंसी बहुशः युगपत रीति से प्रयुक्त हैं। अथर्ववेद में गाथा तथा नाराशंसी इतिहास पुराण के साथ प्रयुक्त हैं। अर्थ निरुक्तकार यास्क ने लिखा है, नाराशंसो यज्ञ इति कारत्यक्यः नरा अस्मिन् नासीनाः संसति। अर्थात यास्क से पूर्ववर्ती काथक्य के अनुसार नाराशंस यज्ञ है, नर इसमें आसीन होकर स्तुति करते हैं। शौनक ने लिखा है, नर ही प्रशस्य आसीन ही बृहद देवता। अर्थात आसीन होकर नर की प्रशंसा के अर्थ में प्रयुक्त है। शाकपुड़ी ने भी नर ही प्रशस्यो भवति भवित लिखा है, अर्थात नरों से जो स्तुति योग्य है। निरुक्तकार ने लिखा है कि येन नरा प्रशस्यन्ते सा नाराशंसो मंत्र, अर्थात जिस मंत्र से नरों की स्तुति हो वह नाराशंस मंत्र होता है। नाराशंसी परंपरा। शतपथ ब्राह्मण ने इतिहास पुराण की उत्पत्ति के संबंध में लिखा है, यदनुशासनानि विद्यावक्की वाक्यम इतिहास पुराणम गाथा नाराशंस्य य एव विद्वान अनुशासना विद्यावको वाक्यम इतिहास पुराण गाथा नाराशंसिः दुत्यहरतः स्वाध्यायम् मधीयते। अर्थात अनुशासन विद्या वाको वाक्य इतिहास पुराण गाथा तथा नाराशंसी के स्वाध्याय पृष्ठ संख्या 139 करने से देवों को मधु से पूर्ण आहुतियां प्राप्त होती हैं। यही जानकर विद्वान अनुशासन विद्या नाराशंसी शब्द नाराशंस से व्युत्पन्न है, जो ऋग्वेद में विभिन्न संदर्भों में विभिन्न रूपों में उल्लिखित है। अवेशा से यह नैर्योसह रूप में उल्लिखित है। निरुक्तकार का अर्थ है कि येन नरा प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मंत्राः, परंतु इसका यह भी अर्थ है कि नरों द्वारा रचित प्रशंसाएं, यह अपने मूल अर्थ नरों की प्रशंसा से युक्त पितरों की प्रशंसा से संबद्ध की। तत्पश्चात इसके अर्थ का विकास दिखाई देता है कि पितरों के साथ ही उनके वस्तुओं और विचारों की प्रशंसा में कथित वचन भी नाराशंसी कहे जाते थे। ये मानवीय प्रशंसाएं एक अग्नि देवता के मानवीय कृत रूप में नाराशंस नाम से की जाती थी, जिनका वर्णन एक कवि के रूप में किया गया है, जिसका जिह्व मधुसिक्त होती थी। इस रूप में वह ब्रह्मणस्पति से संबद्ध हो जाता है। ऋग्वेद में गाथा और रैमिस के साथ प्रयुक्त है, जो एक रचना के रूप में ज्ञात होता है, कालांतर में एक गाथा के रूप में मान्य हो जाता है। गाथा इतिहास पुराण के साथ उस सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है जो वैदिक वाचन में प्रयुक्त होता था। विवाह के अवसर पर इनका संगायन होता था। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर ब्राह्मण क्षत्रिय राजा के विरोचित उपलब्धियों तथा सैनिक विजयों की प्रशंसा में तीन तीन गाथाओं का गायन करते थे। कात्यायन श्रौत सीमांतो नयन संस्कार के अवसर पर राज्य कर रहा रहे राजा वीरो तथा सोम के लिए गायन किया जाता था। वाक्यो वाक्य इतिहास पुराण गाथा नाराशंसी के साथ प्रतिदिन स्वाध्याय करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित नाराशंसी को इतिहास विधा के एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। पंडित भगवत दत्त का मत है कि ब्राह्मण काल में इतिहास पुराणों गाथा ग्रंथों के समान नाराशंसी के ग्रंथ भी विद्यमान थे। नाराशंसी की ऐतिहासिक साहित्य की यह परंपरा कालांतर में भी चलती रही। ब्राह्मण ग्रंथों में अपनी पूर्व स्थिति से विकसित रूप में तैतृय आरण्यक में उल्लिखित है। यद ब्राह्मणनी ब्राह्मणनी इतिहासान पुराणानी कल्पान गाथा नाराशंसृति अर्थात ब्राह्मण इतिहास पुराण कल्प गाथा तथा नाराशंसी समान है। यहाँ सभी पद बहुवचन में प्रयुक्त है। संभवतः नाराशंसी बिखरे रूप में विविध गाथाओं के रूप में लोक में विद्यमान रहे होंगे। आश्वलायन गृहसूत्र में नाराशंसी का अनुशीलन स्वाध्याय के अध्ययनांतर्गत स्वीकार किया गया है तथा इसका स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति के देवों और पितरों को अमृत की कल्या प्राप्त होने का तथ्य उद्घाटित किया गया है। याज्ञवल्क स्मृति में पृष्ठ संख्या 140 उल्लेख है कि वाक्यो वाक्यम पुराणं च नाराशंसी च गाथिका इतिहासांस तथा विद्याः सक्याधीते हि योन्वहम् अर्थात जो वाक्यो वाक्य पुराण नाराशंसी गाथा इतिहास और अन्यान्य विधाओं का प्रतिदिन यथाशक्ति अध्ययन करता है वह अपने पितरों को तृप्त करता है। नाराशंसी की यह परंपरा प्रमाणित करती है कि प्राचीन ऋषियों एवं राजपुरुषों के विरोचित कार्यों की प्रशंसा में यह ऐतिहासिक साहित्य के रूप में वैदिक काल में मौखिक रूप से लोक में विद्यमान रहा जिसका उपग्रहण इतिहास पुराण परंपरा में किया गया और कालांतर में ऐतिहासिक साहित्य में इसके तथ्यों को समाहित कर लिया गया। आख्यान निरुक्त तथा विहद्यता के अनुसार ऋग्वेद की अनेक ऋचाएं आख्यानों से आवृत्त हैं। शुनाशेप तथा पुरुस्ता या तो ऋग्वेद के मंत्रों पर आधारित हैं या प्राचीन किसी परंपरा पर आधारित हैं जिसका प्रतिबिंबन इन मंत्रों में हुआ है। ऋग्वेद के कतिपय सूक्त संवाद सूत्र इसे उसे प्रबंध काव्य तथा नाटकों के साथ ही संबंध जोड़ने वाले हैं। ऐसे सूक्त समग्र ऋग्वेद में लगभग 20 हैं। डॉक्टर ओल्डन वर्ग की दृष्टि में ये प्राचीन आख्यानों के अवशिष्ट रूप हैं। इनकी सम्मति में ऋग्वेद कालीन आख्यान गद्य पद्यात्मक थे। पद्य भाग अधिक रोचक तथा मंजूर होने से अवशिष्ट रह गया। कालांतर के संस्कृत युग में विद्यमान चंपू शैली के आधार पर डॉक्टर ओल्डन वर्ग ने ऋग्वेदीय संवाद सूक्तों को आख्यान के नाम से अभिहित किया है। इसके विपरीत डॉक्टर सिल्वा लेवी डॉक्टर श्रीडर डॉक्टर हर्टल आदि विद्वानों के अनुसार ये संवाद सूक्त वस्तुतः नाटक के अवशिष्ट अंश हैं जिनका संगीत तथा पात्र के उचित सन्निवेश कर देने पर यज्ञ के अवसरों पर वस्तुतः अभिनय होता था। तीसरा मत डॉक्टर विक्टर निर्ज का है जो उन्हें प्राचीन लोकगीत काव्य वैलेट का नमूना मानते हैं। ये अर्ध कथात्मक तथा अर्ध रूपात्मक होने से कथानक तथा नाटक का सम्मिश्रण है। डॉक्टर पाठक का कथन है कि ये कालांतर के ऐतिहासिक नाटकों तथा महाकाव्यों के स्रोत थे। ऋग्वेद के इन संवाद सूक्तों में तीन विशेष महत्वपूर्ण पुरुरवा उर्वशी संवाद यमयमी संवाद तीसरा शर्मापाणी संवाद है। इसी प्रकार दशम खंड का रक्षोहा सूक्त श्रद्धा सूक्ते संवाद सामवेद का विज्ञान गामे गीय गान अथर्ववेद का आयुष्म सूक्त राजकर्म सूक्ते दुंदुभि सूक्त पृथ्वी सूक्त तथा ब्रह्मादि सूक्त भी अनेक आख्यानों के स्रोत बनते हैं। सुनाशेप आख्यान का संकेत ऋग्वेदी सूक्तों में उपलब्ध होता है और इसी का विन्यास ऐतरेय पृष्ठ संख्या 141 ब्राह्मण का वैशिष्ट्य है। पुरुरवा तथा उर्वशी का आख्यान मुख्य है। प्राचीन जलौघ का इतिहास आदि अनेक आख्यान है जिनका बीज संहिता में ही अंतर्निविष्ट है जिन्हें ग्रहण कर ब्राह्मणों तथा पुराणों ने ही और नहीं अपितु इतिहास काव्य रामायण एवं महाभारत ने भी अपने पद्धति के अनुरूप उनका पल्लवन किया। प्राचीन जलौघ जल प्लावन का आख्यान तो विश्व इतिहास का प्रसिद्ध आख्यान बन गया। पंडित भगवत दत्त की जी का कथन है कि आख्यान शास्त्र अति पुरातन है। ऋग्वेदीय शुनहशेब की कथा शतपथ ब्राह्मण व किसी राजसूय आदि यज्ञ के अवसर पर सुनाया गया था। सांख्यायन शोत में भी तदेतच शौनःशेपम् आख्यान लिखा है। आपस्तंभ श्रोत में इसी ने ही शौनःशेषम् आत्यायते लिखा है। यह वैदिक परंपरा थी कि अश्वमेघ की समाप्ति पर आख्यान सुनाए जाते थे। ऐसे एक प्रसंग का संकेत वायुपुराण में किया गया है। अतः ब्राह्मण आख्यान विद तदेतत् सौपर्णम् इति आख्यान विद आचक्षते का उल्लेख है। इससे यह ज्ञात होता है कि महिहास ऐतरेय के काल से पहले आख्यान रचनाओं के ज्ञाताओं की एक श्रेणी बन चुकी थी। ब्राह्मण ग्रंथों में उद्धृत आख्यान लोक भाषा में है, जो लोक परंपरा से उत्पन्न प्राचीन आख्यानों को प्रमाणित करता है। व्याकरण ग्रंथों, यास्कीय निरुक्त और उसकी उत्तरवर्ती बृहद्देवता में अनेक आख्यान मिलते हैं। व्याकरण महाभाष्य में आख्यान के दृष्टांत में तीन उदाहरण दिए गए हैं। या वक्रितक, पंयंगविक, यायातिक, अष्टाध्यायी की काचका वृत्ति में लिखा है न्यास वल्क्यादयो चीरकाला इत्याख्यानेषु वार्ता। शाक्तायन व्याकरण में अविभारक आख्यान का उदाहरण प्राप्त होता है। इन विवरणों से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में अनेक आख्यान ग्रंथ विद्यमान थे। त्रिपिटकांतर्गत ब्रह्मजाल सूत में आख्यान पद प्राप्त है। टीकाकार के अनुसार वहाँ रामायण और महाभारत में आख्यानों का संकेत प्रारंभ में आख्यान ऐतिहासिक साहित्य के बिखरे रूप में मौखिक परंपरा में लोक जीवन में प्रचलित थे। कालांतर में एक विशिष्ट रचना के रूप में इसका विकास हुआ। इसके बाद गाथा नाराशंसी के समान ही इतिहास पुराण की परंपरा में प्रचलन हुआ, जब इतिहास एक पृथक साहित्य का रूप धारण कर रहा था। उस समय इन आख्यानों का समायोजन इतिहास साहित्य में हो गया। आख्यान तथा अनवाख्यान इतिहास के अनुषांगिक अंगों में आख्यान के पश्चात उपाख्यान एवं अनवाख्यान भी प्राप्त है। दृष्टोपलब्धम कथनुपाख्यानम प्रचक्षते काव्यानुशासन। काव्यानुशासन पृष्ठ संख्या 142 पर अपने विवेक में हेमचंद का कथन है कि यदाह नल सवित्री शोषराजोपाख्यानवत् प्रबंधातः अन्य प्रबोधनार्थ यदुपाख्यातम हयुपाख्यान नलोपाख्यान सावित्री उपाख्यान और षोडश राज्योपाख्यानम आदि महाभारत ग्रंथ में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार शकुंतलोपाख्यान आदि भी प्रसिद्ध थे। मैत्रेय आरण्यक के प्रारंभ में ब्रह्म शब्द का उपाख्यान मिलता है, जिसमें इक्ष्वाकु कुल के विहद्रथ का वर्णन किया गया है। आख्यायिका उत्तर वैदिक युग में इतिहास पुराण परंपरा के विकास में आख्यायिका भी आख्यान के प्रकार का ही एक आनुषांगिक अंग है। आख्यायिका का प्राचीनतम उल्लेख तैतीय आरण्यक में हुआ है। यहाँ यह एक नैतिक कथा के रूप में संकेतित है। कात्यायन कृत्वातिक में भी आख्यायिका उसी अर्थ में उल्लिखित है कि ब्राह्मणों के कतिपय अंश आख्यायिका स्वरूप के हैं, परंतु कात्यायन ने इसे आख्यान इतिहास पुराण से सहसंबद्ध एक ऐतिहासिक रचना के रूप में स्वीकारा है। चरक संहिता में लिखा है कि तथा गीत वादित्र उल्लापक श्लोकाख्यायके इतिहास पुराणेषु कुशलम। चरक के इस कथन से यह स्पष्ट संकेतित है कि आख्यायिका इतिहास पुराण का एक रचनात्मक स्वरूप था। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरण धर्मशास्त्र चेत इतिहास। कौटिल्य ने आख्यायिका को इतिहास का एक अंग माना है। महाभाष्यकार पतंजलि ने अपने महाभाष्य में तीन आख्यायिकाओं का नामोल्लेख किया है, वासवदत्ता, सामनोत्तरा तथा मैमरथी। बाणभट्ट ने कादंबरी कथा ग्रंथ में इतिहास पुराण आख्यान की श्रेणी आख्यायिका को स्वीकारते हैं। कदाचित आख्यान आख्यायिका इतिहास पुराण आकर्णनेन। साहित्य शास्त्र के आचार्यों ने आख्यायिका का लक्षण परिभाषा उद्देश्य आदि के संबंध में लिखा है। अमरकोश के सर्वानंदकृत टीका में कोलाहलाचार्य ने लिखा है कि प्रबंध कल्पनायाम प्राक सत्याम सुज्ञा कथाम विदुः परम्पराश्रयो यस्यां सा मताख्यायिका क्वचित्। आख्यायिका परम्पराश्रित ज्ञान है, अर्थात पुराण परंपरा का अनुप्रवेश आख्यायिका से प्राप्त है। भामा ने अपने काव्यालंकार के प्रथम परिच्छेद में लिखा है, प्रकृतानुकूल श्रव्य शब्दार्थ पद वृत्तिना गद्येन युक्तो दात्तार्था सोच्छ्वास आख्यायिका मता। गद्य काव्य के प्रकारों का वर्णन अग्नि पुराण में आख्यायिका कथा खंड कथा परिकथा तथा कथानिका पृष्ठ संख्या 143 से 5 प्रकार के हैं। इसी प्रकार साहित्य दर्पण आख्यायिका कथा वतस्यात कवेद वशादि कीर्तन में आख्यायिका का एक नया लक्षण दिया है कि यह कथा की भांति कवियों की वंश कीर्तन के लिए किया जाता था। साहित्य दर्पण का यह वचन इतिहास के अंग रूप में आख्यायिका संकेतित है। संभव है यह वंश साहित्य की रचना में भी उपयोगी ऐतिहासिक सूचना संग्रह में योगदान देती रही हो। आख्यायिका प्रायः एक ऐतिहासिक रचना के रूप में मानी जाती रही। बाणभट्ट ने हर्षचरित को एक आख्यायिका तथा कादंबरी को कथा माना है। भामा ने काव्यालंकार में स्पष्ट अंतर करते हुए कहा है कि आख्यायिका स्वचेष्टित्व वृत्त वास्तविक चरित काव्य है तथा कथा में कल्पनाश्रयिता है। डॉक्टर पाठक ने ऐतिहासिक वस्तु विन्यास एवं प्रकृति की दृष्टि से इस विभाजन को उचित माना है। पूर्व मध्यकालीन दशरूपक में इतिहास और नाटक के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि दोनों निकट रूप में संबद्ध है और प्राचीन के लिए दोनों को जानना चाहिए। इतिहास और नाटक के इन पारस्परिक संबद्धों का प्रभाव आख्यायिका की प्रकृति पर पड़ा है। कामसूत्र में नाटक आख्यायिका का उल्लेख एक साहित्यिक विधा के रूप में किया गया है।